वसुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि श्लोक संख्या 67। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशु श्रोतव्ये वाच्यम् न च माम् योऽभ्यसूयति। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशु श्रोतव्ये वाच्यम् न च माम् योऽभ्यसूयति। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशु श्रोतव्ये वाच्यम् न च माम् योऽभ्यसूयति। शब्दार्थ बोलिए। इदम् यह ते तुम्हारे द्वारा न कभी नहीं अतपस्काय असंयमी के लिए न कभी नहीं अभक्ताय अभक्त के लिए कदाचन किसी समय न कभी नहीं च भी अश्रुशुष्वे जो भक्ति में रत नहीं है वाच्यम कहने के लिए न कभी नहीं च भी मां मेरे प्रति यह जो अभ्यसूयति द्वेष करता है। अनुवाद मेरे पीछे बोली यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है ना एकनिष्ठ है ना भक्ति में रत है ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। तो यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए मेरे साथ बोलिए ओम अज्ञान तिलकांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादम् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास्तादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से निकालिए, इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। चार प्रकार के लोगों को नहीं बताना, भगवान कह रहे हैं चार प्रकार के लोगों को ये उपदेश नहीं बताना। अब क्या नहीं बताना? पिछले श्लोक में जो भगवान ने चरम उपदेश बताया है, क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरे शरण में आओ सब धर्मों का त्याग करके। ये नहीं बताना, चार प्रकार के लोगों को नहीं बताना, क्योंकि सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, गुह्यतम। तो ये 66वां श्लोक और 65वां श्लोक, ये दो श्लोक गुह्यतम है, क्योंकि 64वें श्लोक में भगवान ने कहा सर्व गुह्यतम भूया सुन में परमम वचन, कि सबसे ज्यादा जो गुह्यतम है ना, उसको फिर से सुनो। तो ये जो दो श्लोकों की जो बात है, ये सबसे ज्यादा गुह्यतम है ना, सबसे ज्यादा गोपनीय है। इसलिए इसको जो है ना भगवान विशेष रूप से बता रहे हैं कि अर्जुन को भगवान बता रहे हैं। भगवान ने कहा क्यों मैं तुम्हें बता रहा हूं इस श्लोक से, मैं दृढ़ मेरी कि तुम मेरे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हारे हित के लिए बता रहा हूं, है ना। तो ये जो है भगवान ने कहा, और 65वें श्लोक में भी भगवान ने कहा कि प्रतिजाने प्रियोसी में तुम मेरे बहुत प्रिय हो। तो कृष्ण के शरण लेना, कृष्ण में मन लगाना, कृष्ण के भक्त बनना, कृष्ण की पूजा करना, कृष्ण को नमस्कार करना है? माम माम भगवान बार बार कहते हैं, मन मना भव, मेरे मन लगाओ, मत भक्तो मेरे भक्त बनो, मत याजी मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो, है ना। तो ये जो बात है भगवान कह रहे हैं मुझको मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मुझे मुझे मुझे, है कि नहीं। तो ये जो बातें हैं ये बहुत गोपनीय है ना। इसलिए इसका इसको जो है विशेष रूप दो श्लोकों की जो बात है इसके लिए भगवान मना कर रहे हैं कि चार प्रकार के लोगों को नहीं बताना, है ना। तो चार प्रकार के लोग कौन कौन से हैं? पहला तो है ना तपस्काय, जो तपस्वी नहीं है उसको नहीं बताना। फिर दूसरा ना अभक्ताय, जो भक्त नहीं है उसको नहीं बताना। फिर तीसरा अश्रुश्रुषवे, जो शुश्रूषा ना करे। तो शुश्रूषा में दो मतलब होते हैं, शुश्रूषा का मतलब है सुनने की इच्छा, और शुश्रूषा का मतलब सेवा भी होता है। वैसे सेवा में और सुनने में अंतर नहीं है, क्योंकि अगर आप सेवा करना चाहते तो आपको सुनना पड़ेगा, अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं, सुनते नहीं और सेवा करते हैं तो क्या है? कोई सेवा नहीं। मैं कहता हूँ प्रभु जी पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ, आप सुनते नहीं, नहीं नहीं मैं सेवा करने में लगा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं सुनने के लिए, और दूध ला रहे हैं गरम गरम दूध ला रहे हैं, मैं सेवा में लगा हूँ, मैं कितनी सेवा कर रहा हूँ आप समझते नहीं मैं कितनी सेवा कर रहा हूँ, अरे प्रभु जी मुझे पानी चाहिए, ना 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 मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। तो जो मुझे चाहिए आप सुनते नहीं, तो इसलिए सुनना, सेवा करने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। तो शुश्रूष नचा शुश्रूष सभी वाचन, जो शुश्रूषु नहीं है जो सुनना नहीं चाहता है ना, और जो व्यक्ति सेवा नहीं करता है तो भीम कहते हैं कि ये मेरी बात सुनता नहीं है, है ना। अगर मैं कहता हूँ कुछ भी आप सुनते हो लेकिन सेवा नहीं करते हो तो मैं क्या कहता हूँ, आपने सुना नहीं मेरी बात, है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति जो सुने और समझे और फिर सेवा करे तो वही जो है मतलब वो है व्यक्ति जो कि सुन रहा है। इन तो सुनने का कोई मतलब नहीं, आपने सुना और आपने नहीं। और सुनने का मतलब यही है, आपको पूछना भी चाहिए। सुना आपने तो कुछ आपको समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया तो आपको हाँ और स्पष्ट करना चाहिए कि आपने क्या कहा, कैसे करना है, क्या करना है, है ना। तो शुश्रूषा में ये सब चीजें होती हैं। चाशु श्रु सर्वे वाच्यम न चमाम यो भी। और चौथा व्यक्ति कौन है जिसको नहीं बताना, जो मेरी निंदा करता है। माम अभिशुई, क्योंकि किस यहाँ पर माम 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 यही बोल रहे हैं, मुझे नमस्कार करो, मुझे मेरी पूजा करो, मुझे मन को लगाओ, है ना। तो वो तो फिर जो ना बहुत ज्यादा उसके लिए उद्वेग हो जाएगा, उसको तो बड़ा उद्वेग होगा कि कृष्ण जो ना क्यों ऐसा बोल रहे हैं, है कि नहीं। तो बड़ा उद्वेग हो जाएगा वो। तो चार प्रकार के लोगों को ये संदेश नहीं बताना, तो विशेष रूप से यही सर्व गुहितम, क्योंकि भगवान ने गुहितर ज्ञान दिया है। तो गुहितर ज्ञान आप दे सकते हो, गुहितर ज्ञान में आप किसी को बता सकते हो क्या कि ईश्वर सर्व भूतानां हृदये हृदयं तिष्ठति, है ना। ये कौन सा श्लोक है, 61वां श्लोक है, है? तो ये तो आप बता सकते हो कि सबके हृदय में स्थित है, तो इसमें किसको फिर जो ना आपत्ति होगी। उसी के शरण में जाओ जो सबके हृदय में स्थित है। जहां पर कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में मेरे से नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो, ये वो कहेगा अरे ये तो जो ना मतलब गलत बात है, ये तो अपना प्रोपोगंडा कर रहे हैं कृष्ण, अपना प्रचार कर रहे हैं, है नहीं। लेकिन गुहितर ज्ञान है, ठीक है भाई, सबके हृदय में विराजमान है तो ठीक है। और ये ज्ञान तो प्रहलाद जी ने भी दिया, जब उनके असुर जो गुरु थे, असुर गुरु थे, उन्होंने कहा कि किसने तुम्हारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट की है कि नहीं, किसने तुम्हारी इतनी बुद्धि भ्रष्ट की है। तो उन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया कि विष्णु है, है ना, ये नहीं कहा, ये नारद जी का नाम नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि जो भगवान जो है सबके दिल में बैठे हुए हैं, है ना, सबको बुद्धि दे रहे हैं, उन्हीं नहीं मेरी बुद्धि को अगर तुम कहते हो भ्रष्ट की है तो भ्रष्ट की उन्हें नहीं किया। तो ये तो असुरों को भी मतलब जवाब दे दिया प्रहलाद जी ने, लेकिन विष्णु के नाम गुण लीलाएं ये सब नहीं बताई उन्होंने, जो भगवान है तो ये उत्तर दिया जा सकता है। और गुह्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ये भी दिया जा सकता है किसी को, जैसे 54वां श्लोक है ना, श्लोक संख्या 54 गुह्य ज्ञान है। तो इसमें भगवान कहते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, है ना। तो ये भी ठीक है भाई, जो भी ब्रह्मभूत होता है वो शोक भी नहीं करता है, आकांक्षा भी नहीं करता है। तो गुह्य ज्ञान और गुह्यतर ज्ञान तो दिया जा सकता है कुछ स्थितियों में लोगों को, लेकिन गुह्यतम ज्ञान है इसमें भगवान बहुत चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसे नहीं बताना, सबको नहीं बताना, है ना। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की, जिन लोगों ने तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत में भक्ति का कभी प्रयत्न नहीं किया, जिन्होंने किसी शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की, तथा विशेषतया जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, ये जो कृष्ण की महानता से द्वेष रखते हैं, उन्हें ये परम गुह्य ज्ञान नहीं बताना चाहिए। देखा, एक ही वाक्य में प्रभुपाद जी ने चारों की चर्चा की है। पहले भगवान ने कहा है उसको नहीं बताना जो तपस्वी नहीं है। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, जिन लोगों ने तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए, तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान, तपस्या में मतलब कि कुछ अगर आपके शरीर को तकलीफ भी हो, असुविधा भी हो, तो भी वो शास्त्र के अनुसार, आचार्यों के अनुसार जो धार्मिक अनुष्ठान जो दिए गए हैं, नियम है, उनका आपने पालन किया है कि नहीं, ये है ना तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान। तो कोई भी व्यक्ति जो है ना अपने ढंग से धार्मिक अनुष्ठान बना लेता है जिसमें अपने को कोई असुविधा ना हो, है नहीं, तो तपस्या नहीं करना चाहते वो, धर्म के चार चरण हैं, है ना, सत्य, शौच, तप और दया, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो तपस्या है तो इसका यही मतलब है कि वो जो है तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान, उससे कुछ तकलीफ हो तो भी वो जो है धर्म के नियमों का पालन करता हूँ, है कि नहीं। तो ये बहुत जरूरी है तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान। जैसे कि कार्तिक व्रत में कथा आती है गुणवती की, जो पूर्व जन्म में सत्यभामा थी। सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैंने पूर्व जन्म में क्या पुण्य किया था कि मैं आपकी भार्या बनी हूँ। तो कृष्ण ने बताया कि वो पूर्व जन्म में गुणवती थी, तो एकादशी का व्रत,
व्रत और कार्तिक व्रत, ये दो नियम नहीं छोड़े। तो कार्तिक में स्नान करती थी, है ना, तो सवेरे सवेरे गंगा जी में स्नान करती थी, और वृद्धावस्था हो गई तो भी उसने उस नियम का नहीं छोड़ा, है ना। और उसको वृद्धावस्था भी आ गई और फिर बुखार भी था तो भी वो स्नान करने गई गंगा जी में, है ना। तो ये जो है ना, मतलब जो है कि असुविधा हो तो भी नियमों का पालन करना, तो ये जो है व्यक्ति के लिए जरूरी है। और फिर ना भक्ता है कदाचन, जो भक्त नहीं है उसको नहीं देना, ये भगवान ने कहा। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत में भक्ति का कभी प्रयत्न नहीं किया, है ना। तो विशेष रूप से भक्ति मतलब श्रवण कीर्तन का जो नियम है, उसने अगर उसका प्रयत्न नहीं किया, भक्ति का प्रयत्न नहीं किया कृष्ण भावनामृत में, उसको नहीं बताना। फिर भगवान कहते हैं न चासु श्रुसवे वाच्यम, शुश्रूषु जो नहीं है उसको नहीं बताना, शुश्रूषा नहीं जिसने की है। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, जिन्होंने किसी शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की, ठीक है ना। शुश्रूषा का मतलब ये है, गुरु शुश्रूषा, गुरु के द्वारा श्रवण करना और गुरु के द्वारा गुरु की सेवा करना। तो जिसने शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की है, अच्छा। और फिर चौथा भगवान कहते हैं निचमाम यो विश्वेति, जो मुझसे द्वेष करता है। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, विशेषते जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, है ना, द्वेष करते हैं, ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, मतलब कि कभी पैदा हुए और कृष्ण और कभी मर गए, है कि नहीं, और मृत्यु हो गई कृष्ण की, है ना। जैसा सामान्य व्यक्ति पैदा होता है और मरता है, इसी प्रकार से कृष्ण भी पैदा हुए और मर गए, है कि नहीं। और कैसे मर गए, हाँ, एक बहेलिया के बाण से मर गए, है ना, और मर गए तो मर गए। अब बस ऐतिहासिक पुरुष से बस नाम रह गया, जैसे कि पहले वो थे लिंकन थे, अब्राहम लिंकन थे, लेनिन थे, स्टालिन थे, है कि नहीं, ऐसे और भी कई लोग हुए हैं। तो उसी प्रकार से कृष्ण भी थे कभी, हाँ, हिटलर थे, है कि नहीं, ऐसे कृष्ण भी थे कभी। तो नाम रह गया है और बाकी तो बस खत्म हो गए, तो खत्म हो गए, बाकी अब थोड़ी रहे कुछ, है ना। इस प्रकार से ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, है ना, तो उनको नहीं बताना। या जो कृष्ण की महानता से द्वेष कर रखते हैं, अगर मानते भी हैं कि मान लो कृष्ण है, भगवान है, लेकिन वो भगवान क्यों है और हम क्यों नहीं भगवान, द्वेष करते हैं कृष्ण की महानता से, द्वेष करते हैं। जैसे कृष्ण है तो गोपियों के साथ लीला करते हैं, तो उनको कृष्ण से बड़ी द्वेष, बड़ा द्वेष होता है कि भाई हमको तो मना किया जाता है कि हम छेड़खानी ना करें, है, और कृष्ण छेड़ते हैं। तो किसी गाड़ी के पीछे लिखा था कि कृष्ण छेड़ते हैं तो लीला है उनकी, और हम छोड़े, हम छेड़े तो पाप, क्या। तो इस प्रकार से कृष्ण से द्वेष करते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को ये गोहितम ज्ञान नहीं बताना कि कृष्ण की शरण में जाओ। कृष्ण कहते हैं सब धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आओ, तो कहेंगे ये क्या बात हुई, सब धर्मों को छोड़कर कृष्ण की शरण में जाएं, सब प्रकार के धर्म छोड़ना, ये क्या बात हुई कि कृष्ण की शरण में जाएं, कृष्ण की बात मानो। और इतने बड़े बड़े धर्म हैं दुनिया भर में जो बने हुए हैं, उनको छोड़कर कृष्ण की शरण में जाएं, ये तो बहुत गलत बात है कृष्ण की, है ना। तो इस प्रकार से जो है ना वो द्वेष करते हैं, तो उनको बताना ही नहीं, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं उन्हें ये परम गुह ज्ञान नहीं बताने। परम गुह ज्ञान मतलब गुहितम, जो अर्जुन को भगवान ने कहा कि मैं तुमको गुहितम ज्ञान बताता हूं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि कृष्ण से द्वेष रखने वाले आसुरी पुरुष भी कृष्ण की पूजा भिन्न प्रकार से करते हैं। हाँ, द्वेष रखते हैं लेकिन पूजा करते हैं। कैसे? और व्यवसाय चलाने के लिए भगवत गीता का प्रवचन करने का धंधा अपना लेते हैं। हाँ, ये बहुत ज्यादा है। इसी प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी कभी देखा जाता है, बहुत ज्यादा चल रहा है। कृष्ण से द्वेष करते हैं लेकिन भगवत गीता का प्रवचन करने का धंधा भी अपना लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवत गीता के नाम से वे जो है ना अपने जो गलत सिद्धांत है, कृष्ण के विरुद्ध सिद्धांत भी जो है ना वो चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवत गीता के नाम पर सुना चलेगा, है कि नहीं? जैसे कि मतलब कोई अच्छी कंपनी है कि नहीं, तो उसके नाम से जो है अपना नकली माल जो है वो चला रहे हैं, उसमें जो ना नकली लेबल लगा दिए है ना, तो उसमें जो ना अपना जो गलत सामान है वो अपना चला रहे हैं। नहीं तो वैसे कौन लेगा उनके नाम से? लेकिन जो कि नामी कंपनी है तो उसमें जो है ना वो अपना चला रहे हैं, गलत माल चला रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से या मिलावट कर देते हैं, है कि नहीं? जैसे क्या? हाँ, घी में, शुद्ध घी में जो ना डालडा की मिलावट करते हैं, शुद्ध घी नाम पर बेचते हैं। तो गीता में जो ना अपने बातों को मिला देते हैं, अपने सिद्धांत मिला देते हैं और गीता के नाम पर जो ना बता रहे हैं कि ये है कि नहीं। और गीता में कृष्ण को निकाल देते हैं, कृष्ण से द्वेष करते हैं तो कृष्ण को निकाल देते हैं है? और अपने सिद्धांत डाल देते हैं। और जहां कृष्ण ने कहा है कि मेरी शरण में आओ, मामेकम शरणम व्रज, तो वहां पर वे क्या साफ लिखते हैं, जैसे भूतपूर्व राष्ट्रपति भारतवर्ष के सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो उन्होंने गीता की टीका लिखी है। तो इस श्लोक में जहां कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, तो वो क्या कहते हैं, यहां पर हमें कृष्ण की शरण नहीं लेना चाहिए। कृष्ण के अंदर जो अजन्मा आत्मा है, निराकार है, उसकी शरण लेना चाहिए। आप समझे? तो ये जो है, तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को बताना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे लोग जो है गीता की व्याख्या कर रहे हैं तो ऐसे लोगों से सुनना भी नहीं चाहिए। ये भी समझ लो कि ऐसे लोग जो है जो कृष्ण से द्वेष करते हैं, उनको तो ये उपदेश बताना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर वे लोग उपदेश बताएं तो उनसे सुनना भी नहीं चाहिए, है ना। तो ये जो है ना उसमें जहर मिला रहे हैं, दूध में जहर मिला रहे हैं, जैसे दूध में सांप जो है ना आकर जूठा कर देते हैं दूध को, तो वो फिर दूध जहरीला हो जाता है। तो भगवान के संदेश में जो ना अपने अपनी बात जोड़ दी, भगवान की बात निकाल दी, तो जहरीला हो गया। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे लोग व्यवसाय चलाने के लिए भगवत गीता का प्रवचन करने का धंधा अपना लेते हैं, लेकिन जो सचमुच कृष्ण को जानने का इच्छुक हो उसे भगवत गीता के ऐसे भाष्यों से बचना चाहिए। बहुत है आवश्यक सूचनाएं, बहुत ही आवश्यक सूचना है कि ऐसे भाषण से बचना चाहिए। मायावादी भाषा सुनला है वे सर्वनाश, जो मायावादी भाषा है उसको सुनने से सर्वनाश हो जाता है, है कि नहीं? मायावादी कृष्ण अपराधी, वो कृष्ण के अपराधी हैं, कृष्ण से द्वेष करते हैं, है ना। तो आगे प्रभुपाल लिखते हैं, वास्तव में कामी लोग भगवत गीता के प्रयोजन को नहीं समझ पाते। अब ये फिर से उसी पर आ गए, क्या? पहले प्रकार के लोग कौन से हैं? जो तपस्वी नहीं है। तो यहां प्रभुपाल लिखते हैं कामी, है कि नहीं, जो अपनी इंद्रियों का संयम नहीं करते हैं। तो कामी लोग भगवत गीता के प्रयोजन को नहीं समझ पाते, वो नहीं समझ पाएंगे। कृष्ण कहते हैं मुझे मन को लगाओ, मेरे भक्त बनो, है ना। उनका मन लगा है किसमें? विषय भोगों में। तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि कृष्ण मन को लगाए, क्योंकि चित्त बहुत दूषित है उनका, बहुत ज्यादा दूषित है। तो जब परम गोपनीय ज्ञान जो कृष्ण बता रहे हैं कि मुझे मन को लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, है ना, नहीं वो है स्त्री के भक्त है, कामी तपस्वी नहीं है वो, है कि नहीं? वो स्त्री के भक्त है, स्त्री मन को लगाते हैं और स्त्री के भक्ति करते हैं, स्त्री की पूजा करते हैं, स्त्री को नमस्कार करते हैं, है ना। तो वो कैसे समझेंगे? महत्सेवाम द्वारा माहौल विमुक्ते तमो द्वारा योषिताम संगे संगम, जो स्त्रियों की में आसक्त हैं उनका जो संगति है वो तमोद्वार है, अंधकार का रास्ता है वो, है ना। तो बिल्कुल नहीं समझेंगे कि कृष्ण जो ना मन को लगाएं, कृष्ण की पूजा करें, कृष्ण को नमस्कार करें, बिल्कुल जो ना उनको वो कैसा लगता है, जहर के समान लगता है। तो भगवान कह रहे हैं परम गोपनीय ज्ञान है ये, है ना। तो वो कभी नहीं इस बात को स्वीकार करेंगे, मामेकम शरणम, सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ, है ना। तो वो बिल्कुल नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो विषय भोग में इतने आसक्त हैं, वो कैसे तैयार हो जाएंगे कि कृष्ण जैसा कहेंगे वैसे ही मैं करूं, है? वो कभी नहीं समर्पित होना चाहेंगे कृष्ण को। तो ये बिल्कुल जहर है, बिल्कुल मतलब बड़ा तीव्र जहर जैसा उनको लगेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि पहले प्रकार के लोग हैं जो तपस्वी नहीं है, उनको नहीं बताना। तो क्योंकि भगवद गीता के प्रयोजन को समझ नहीं पाएंगे वो। अच्छा, फिर दूसरा है अभक्त। तो प्रभुपाद लिखते हैं, यदि कोई कामी ना भी हो और वैदिक शास्त्रों द्वारा आदिष्ट नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता हो, लेकिन यदि वह भक्त नहीं है तो वह कृष्ण को नहीं समझ सकता। तो वो भक्त नहीं है, यदि भी तपस्वी है, तपस्वी है लेकिन भक्त नहीं है। जैसे बहुत से लोग देखे जाते हैं कि कामी तो नहीं है लेकिन वो जो है भक्त नहीं होते, वो स्त्री के संग का त्याग करते हैं लेकिन भक्त नहीं होते हैं, है? तो उसको भी नहीं बताना। अच्छा, इसके बाद प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि कोई है अपने को कृष्ण भक्त बता रहे हैं, अपने को कृष्ण भक्त बता रहा है, तो आप क्या कहोगे? वो कहेंगे नहीं, मैं तो कृष्ण का भक्त हूं, अपने को बता रहा है कृष्ण भक्त है, लेकिन कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में रत नहीं रहता, तभी वह कृष्ण को नहीं समझ पाता, शुश्रूषण नहीं करता, भक्तों का भक्त नहीं है। अपने को कृष्ण का भक्त बताता है लेकिन भक्तों का भक्त नहीं है, तो वो क्या है? भक्त तो नहीं है, है ना। जैसे एक श्लोक है ना, ये में भक्त जना पार ते में भक्त जना मता, मद भक्ता नाम ते भक्ता ते में भक्त तमाम मता। जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो मेरे सबसे बड़े भक्त हैं, जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं है। तो कोई व्यक्ति अपने को कृष्ण का भक्त कहता है लेकिन कृष्ण नहीं कहते कि मेरा भक्त है, तो क्या फायदा, है ना। तो कोई अपने को भक्त कहता है लेकिन शुश्रूषण नहीं करता है, भक्तों की सेवा नहीं करता, वो कहता है मैं सीधे कृष्ण की भक्ति करूंगा, मुझे भक्तों से क्या मतलब, है कि नहीं। तो ये जो है ना शुश्रूषण नहीं करता है भक्तों की, तो उसको नहीं बताना। तो प्रभुपाद लिखते हैं वो भी कृष्ण को नहीं समझ पाता है ना। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान से इसलिए द्वेष रखते हैं क्योंकि उन्होंने भगवद गीता में कहा है कि वे परम हैं और कोई ना तो उनसे बढ़कर है और ना उनके समान है। तो फिर इस बात से उनको बहुत चिढ़ होती है कि कृष्ण जो है ये बात क्यों कही, किसने ये बात क्यों कही, ये बात तो बहुत गलत है, ये तो अहंकार की बात हो गई, है ना। कि कृष्ण कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर के कोई नहीं है, है ना। तो कई जगह कृष्ण इस प्रकार की बात बोलते हैं तो कहते हैं भाई ये बात जो है ना मतलब ठीक नहीं लग रही है कृष्ण की, है कि वो अपने समान भी किसी को नहीं कहते हैं, अपने से बढ़कर के किसी को नहीं कहते हैं। आप भी सुखे थी, है ना। हमने तो पढ़ा था एक पुस्तक वयम रक्षामः, वो आचार्य वो कौन से आचार्य चतुरसेन, आचार्य चतुरसेन की पुस्तक लिखी हुई है। तो कहते हैं कि रावण का सिद्धांत और गीता का सिद्धांत एक ही है, रावण का सिद्धांत और गीता का सिद्धांत एक ही है, है? रावण भी अपने को ईश्वर कहता था और गीता में भी कृष्ण ने अपने को ईश्वर कहा है, तो एक ही सिद्धांत है। कितना मतलब घोर अज्ञान है। तो ऐसे लोग जो है मतलब नहीं समझ सकते, कृष्ण से द्वेष करते हैं वो, है ना। और एक जो मायावादी है, अमृत हरि प्रभु बता रहे थे कि जब उन्होंने मतलब गीता में बताया कि कृष्ण अपने को जब बता रहे हैं कि मैं परमेश्वर हूं, है? तो आप क्यों नहीं मानते, तो क्या कहता है वो कि कृष्ण गीता में मैं जो कर रहे हैं तो उसी प्रकार से जैसे बकरा मैं करता है। कितने द्वेष करने वाले हैं। बकरा मैं गर्दा है और कृष्ण में गीता में मैं कर रहे हैं, वो मायावादी था। इस प्रकार से जो है ये ईर्ष्या करने वाले हैं, इनको नहीं बताना कभी भी उद्देश्य नहीं बताना, क्योंकि और अपराध करके और नरक में अपना रास्ता बना रहे हैं और वैसे नरक में जा रहे हैं ये लोग। तो प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं, ऐसे लोगों को भगवद गीता नहीं सुनाना चाहिए क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाते। श्रद्धा विहीन लोग भगवद गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। शुद्ध भक्त से कृष्ण को समझे बिना किसी को भगवद गीता की टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अगर गीता की टीका करते हैं तो फिर क्या होता है जानते हैं कि नरक की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से गीता की टीका करते हैं, गलत फलत टीका करते हैं, तो ये जो है ना नाम अपराध में भी एक आता है, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना है कि नहीं। तो वो गीता से ही गीता के विरुद्ध जो है ना जो बातें हैं कृष्ण के विरुद्ध है वो बातें वो लिख रहे हैं, तो वो जो है घोर अपराध करते हैं और नरक की प्राप्ति करते हैं। और ऐसे लोगों को जो है नरक प्राप्त होता है, ऐसे लोगों को नरक प्राप्त होता है। कौन सा नरक प्राप्त होता है जानते हैं? असीपत्रवन नाम का नरक प्राप्त होता है। एक ऐसा जंगल है, एक ऐसा जंगल है जहां पर पेड़ लगे हुए हैं और उन पेड़ों के पत्ते जो ना तलवार के समान हैं, तो वहां पर उसको छोड़ दिया जाता है ना, और उसके पीछे यमदूत जो ना कोड़े मारते हैं तो भागता है वो, और जब भागता है तो वो जो पत्ते हैं ना इधर से उधर से उसको काटते हैं, तो पूरा शरीर कटता रहता है उसका। और उसको भागना भी पड़ता है कि यमदूत उसके पीछे पड़े हुए कोड़ा मार रहे हैं, अगर नहीं भागेगा तो पीछे से कोड़े लग रहे हैं और